प्रकृति उद्दीपन रूप में। भारतीय काव्य शास्त्रों में प्रकृति की मान्यता उद्दीपन विभाव के रूप में भी स्वीकृत की गई है। जब किसी स्थायी भाव का आलंबन प्रकृति ना होकर अन्य कोई प्रत्यक्ष आलंबन होता है, उस समय प्रकृति उद्दीपन विभाव के अंतर्गत ही आती है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध चिरस्थायी होने के कारण मन की किसी भी दशा में प्रकृति उसके समानांतर लगती है। चित्त की आनंदमय स्थिति में प्रकृति का उल्लास आनंद को द्विगुणित करता है और कभी मनुष्य की व्यथा से निरपेक्ष रहकर उसे कष्ट पहुंचाता है। प्रकृति के सुंदर और भयंकर दृश्य संयोग या विप्रयोग में आश्रय के हृदय में जगे हुए भाव को तीव्रतम कर देते हैं। यही कारण है कि काव्यशास्त्रों में और विशेषकर श्रृंगार रस के कवियों में प्रकृति के उद्दीपन पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रकृति के उद्दीपनात्मक रूप के संबंध में केशव की शास्त्रीय धारणा कुछ भिन्न है, यह बात हम आचार्यत्व संबंधी परिच्छेद में देख चुके हैं। वे जहाँ तक श्रृंगार का संबंध है, उसकी व्यापकता एवं मनोवैज्ञानिकता के आधार पर प्राकृतिक समंजस रूपों एवं दृश्यों में उद्दीपनात्मक ही नहीं आलंबनात्मक क्षमता स्वीकार करते हैं। अयोध्या नगरी के उपवन को उन्होंने कामोद्दीपन रूप में वर्णित किया है। देखी बाग अनुराग उपजय, बोलत कल ध्वनि कोकिल सज्जय, राजति रति की सखी सुवेशनी, मनहु बहति मनमथ संदेशनी। यहाँ केशव ने अपनी धारणा के अनुसार उपवन के रमणीक दृश्य को रत्युद्भावन की क्षमता प्रदान करने का प्रयत्न किया है। हम देख चुके हैं कि केशव का यह दृष्टिकोण आचार्य परंपरा से भिन्न रहा है, अतः उस परंपरा का अनुसरण करते हुए हम इस प्रकार के स्थलों को अपनी आलोचना में उद्दीपनात्मक रूपों में ही रख सकते हैं और अपनी धाराबद्ध दृष्टि से ही उसकी समीक्षा कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखने की बात है कि केशव ने प्रकृति को जो आलंबन रूपता प्रदान की है, वह श्रृंगार रस के संदर्भ में एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही। प्रिय के समीप होने पर तो आनंद ही आनंद है, इसी कारण तप्त धूल और आतप का आधिक्य राम के साथ सीता को शीतल प्रतीत होता है। धाम को राम समीप महाबल, सीता ही लागत है अति शीतल, मार्ग की रज तापित है अति, केशव सीता ही शीतल लागत। कवि प्रिया के आक्षेपालंकार के प्रसंग में प्रकृति के उद्दीपक रूप का अत्यंत स्पष्ट अंकन कवि ने किया है। प्रकृति के साथ मानव हृदय का तादात्म्य जैसा इस बारह मासे में कवि ने दिखाया है, वह प्रशंसनीय है। प्रत्येक मास अपनी अपनी विशेषताओं में संयोगितों के सुख की अभिवृद्धि करता हुआ उनकी भावनाओं को उद्दीप्त करता है और वे बिछुड़ने के नाम से घबराने लगते हैं। निम्न पद में ही नारी हृदय चारों ओर की प्रकृति को हर्षित और अपने अपने प्रिय से संयुक्त होते देख आंदोलित हो उठता है। केशव सरिता सकल मिलित, सागर मन मोह, ललित लता लपटात तरुण, तन तरुवर सोहें, रुचि चपला मिली मेघ चपल, चमकत चहु ओरन, मन भावन कहाँ भेटी भूमि, कूजत मिसमोरन, इही रीति रमन रमनी सकल, लागे रमन रमावन, प्रिय गमन करन की को कहे, गमन सुनिए नहीं सावन। वास्तव में उद्दीपन की दृष्टि से काव्यशास्त्रों में बसंत और वर्षा को विशेष स्थान दिया गया है। संयोगी हो या विरही, दोनों के मन को वर्षा उत्कंठित कर देती है। इसी कारण कालिदास ने इसे कामिजन प्रिय कहा है और यह मान मोचन कराने वाली ऋतु है। केशव के राधा और कृष्ण का मान भी वर्षा के प्रभाव से स्वतः ही भंग हो जाता है। घनमाला अभिसारिका को आमंत्रण देने लग जाती है और विद्युत उसकी पथ प्रदर्शिका बन जाती है। लीनी हम मोल अनबोलो आई, जान्यो मोह मोही घनश्याम घनमाला बोली लाई है, देख्यो होय है दुख जहां, देहु हु न देखी परे, देखी कैसे बाट केसो दामिनी दिखाई है। विरह में शीतल चंद्रमा सूर्य सा प्रतीत होता है, दिशाएं अग्नि से प्रतीत होने लगती हैं। हिमांशु सूर सो लगे, सो बात वज्र सो बहे, दिशा लगे कृषाणु ज्यो, विलेप अंग को दहे, विशेष काल राती सी कराल राती मानिए, वियोग सिय को न काल लोक हार जानिए। यहाँ अनुभूति के आवरण में अनुभूति की प्रधानता का सुंदर प्रकाशन कवि ने किया है। सीता के अपहरण के पश्चात राम को विरहावस्था के कारण जर और चेतन भेद विस्मृत हो जाता है। इतना ही नहीं, चकोर से भी सहायता की याचना करते हैं। सीता कृत चकोर के प्रति पूर्व उपकार का स्मरण कराते हुए राम चकोर से सीता के संबंध में पूछते हैं। अब तक तो वे मनुष्येतर प्राणी वर्ग से ही सहायता की याचना करते हैं, पर विरह का आवेग जैसे जैसे बढ़ता है, वे प्राणहीन पदार्थों, वृक्षों और वनस्पतियों तक से सीता संबंधी वार्ता पूछने लगते हैं। अन्य वृक्षों को कठोर हृदय बतलाते हुए वे करुण वृक्ष से सहायता की प्रार्थना करते हैं। प्रिया के अभाव में प्रकृति के विभिन्न उपादानों को जो उनकी प्रिया के अंगों से साम्य रखते हैं, देखकर जैसे तैसे वे जीवन धारण किए हुए थे, पर वर्षा ऋतु ने आकर उनका यह अवलंबन भी छीन लिया। कलहंस कला निधि खंजन कंज कछु दिन केशव देखी जिए, गति आनन लोचन पाइन के अनुरूपक से मन मानी लिए। यही काल कराल ते सोधी सबय, हठी के वर्षा मिस दूरी किए, अब धौ बिनु प्राण प्रिया रही है कहीं कौन हितु अवलंबी ही है। किंतु कभी कभी प्रकृति में चिरदग्ध हृदय का साम्य देखकर विरही राम को यति किंचित संतोष भी मिलता है। निरंतर जल वर्षण के कारण और घनघोर घटाचन्य आकाश के कारण से सूर्य की ज्योति कम हो जाती है और चंद्रमा भी मंद दुति रहता है। राम को इन दोनों में अपने उल्लासहीन हृदय का साम्य मिलता है। इस प्रकार प्रकृति को मानवीय भावनाओं के आधार पर अंकित करते हुए उद्दीपन शैली का आश्रय कवि ने लिया है और मानव तथा प्रकृति के बीच सुंदरता और सहृदयता से एक कोमल भावना प्रदर्शित करने का सफल प्रयास किया है। यद्यपि प्रत्येक शब्द में यहाँ भी कवि ने अपने काव्य कौशल को दिखाया है, पर इन प्रकृति चित्रणों में उनकी अलंकारवादी मनोवृत्ति और रस परिपाक शक्ति का उचित सामंजस्य बन पड़ा है। उपमान रूप में उपमान योजना करते समय भी सभी कवियों ने प्रकृति के असीम भंडार से लाभ उठाया है और यह स्वाभाविक भी है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, मेघ, आंधी, समुद्र, वन, पर्वत, लता, वृक्ष, पुष्प, भ्रमर आदि हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और इसी कारण ये हमारी दृष्टि से ओझल भी नहीं होते। किसी के मुख पर झलकते हुए तेज की अभिव्यक्ति के लिए हम सूर्य को उपमान बनाते हैं, तो कभी शरीर की कोमलता की व्यंजना कराने के लिए उसे लता जैसे बताते हैं। किसी वस्तु का वर्णन करते समय सादृश्य स्थापना के लिए प्रकृति ही हमारी सहायिका हुई है। मानवीय सौंदर्य की पूर्ण और प्रभावमयी अभिव्यंजना के लिए कवि को प्रकृति में सब कुछ मिल जाता है और कवियों के ऐसे ही प्रयोगों को देखकर काव्य शास्त्रियों ने कुछ उपमानों रूढ़ कर दिया है। हाँ, उसके साथ साथ अपनी प्रतिभा के बल से नए उपमानों का आविष्कार भी करते हैं या प्रसिद्ध उपमानों को नवीन ढंग से भी रखते हैं। जो कवि साहित्यिक परंपरा में बंधे होते हैं वे प्रकृति का अप्रस्तुत रूप में उपयोग रूढ़ी के आधार पर ही करते हैं और ऋतिकाल के कवियों में भी यही चीज मिलती है। किंतु कुशल और प्रतिभाशाली कवियों ने अवश्य कुछ नए और सुंदर प्रयोग किए हैं। केशव इन्हीं में से हैं। राधा की शोभा के वर्णन में प्रकृति के सभी रूढ़ उपमान कवि ने प्रयुक्त कर दिए हैं। कंज दार्यो बिंब पिक बैनी कल्प तरु आदि क्रमशः नायिका के नेत्र, दसन, अधर आदि अवयवों के लिए प्रसिद्ध उपमान है और प्रायः सभी कवियों ने अपने अपने काव्य में उनका प्रयोग किया है। सीता के नक्षिक वर्णन में भी कवि ने प्रचलित उपमानों का प्रयोग किया है। मुख के लिए चंद्रमा प्रसिद्ध उपमान है और केशव श्लेष पुष्ट उपमा के द्वारा सीता के मुख की शोभा का वर्णन करते हैं। चंद्रमा सी चंद्रमुखी सब जग जानिए, यहाँ कवि ने चंद्र की सभी विशेषताओं को सीता के मुख में भी दर्शित करा दिया है। परंतु शीघ्र ही वह सीता के मुख के लिए बड़े तार्किक ढंग से चंद्रमा को अनुपयुक्त उपमान ठहरा कर कमल जैसा दर्शित करता है। सुंदर सुवास अरु कोमल अमल अति सीता जू को मुख सखी केवल कमल सो। कहीं कहीं कवि प्रसिद्ध उपमानों की अपेक्षा उपमेय के सौंदर्य का उत्कर्ष दिखाते हैं। केशव ने भी उपमेय मुख में उत्कर्ष और उपमान कमल तथा चंद्र में अपकर्ष दिया है। एकै कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एकै कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल त तो रयानी में न सकुचेरी, चंद जो तो वासर न होई दुति मंदरे, वासर ही कमल रजनी ही में चंदमुख। कवि ने अपनी सभी रचनाओं में प्राकृतिक रूप उपमानों का प्रयोग किया है, जिनमें कहीं कहीं मौलिकता का संस्पर्श भी है। अनेक प्राकृतिक रूपों की अप्रस्तुत रूप में परीक्षा सादृश्य की दृष्टि से बड़ी मनोहर और उपयुक्त जान पड़ी है। राम लक्ष्मण आदि की बारात से जनकपुरवासियों के मिलन को दिखाने के लिए कवि ने सागर और सरिता के प्रेम मिलन की स्वाभाविक उत्प्रेक्षा दी है। वनिचारी बारात चहूं दिसी आई, नृपचारी चमु अगवान पछाई, जनु सागर कौ सरिता पगुधारी, तिनके मिली वे कह वहां पसारी। इसी प्रकार वन जाते हुए राम के पीछे, उमड़ते हुए जनसागर के लिए भगीरथ के पीछे, बहती हुई गंगा धारा की उत्प्रेक्षा अत्यंत भावपूर्ण हो गई है। इसी प्रकार कहीं निजी अनुभव के सहारे उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मार्मिक और स्वाभाविक चित्रों को अप्रस्तुत रूप में नियोजित किया है। वन में राम से भेंटने के लिए माताएं उसी आकुलता से दौड़ती हैं जैसे घास चरकर आती हुई गायें अपने बछड़ों से मिलने को दौड़ती हैं। मातु सबे मिली वे कहाँ आई, ज्यों सुत को सुरभि सुलवाई। कहना ना होगा कि ऐसे स्थलों पर कवि ने अत्यंत सहृदयतापूर्वक प्रकृति के क्षेत्र से अप्रस्तुतों को चुना है, पर उनकी प्राकृतिक अप्रस्तुत योजना का चरम उत्कर्ष वही है जहां वे चमत्कार का आश्रय लेते हैं। रावण के हाथ पड़ी सीता बवंडर के मध्य पड़े वे सुंदर चित्र जैसी है। चित्र की सी पुत्रिका कह रूरे बगड़ूड़े माही। रूप और आकार के वर्णन में भी कवि ने चमत्कार की प्रेरणा से उपमानों को ग्रहण किया है। मार्ग में जाते हुए राम सीता और लक्ष्मण ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मेघ मंदाकिनी चारु सौदामिनी, रूप रूरे लसै देहधारी मनो, भूरी भागीरथि भारती हंस जा, अंश के हैं मनो भाग्य भारे भनु। अवधपुरी में अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियों का सुंदर चित्रण हुआ है। उनके शरीर की शोभा मेघों में से कौंधती हुई दामिनी और सूर्य किरणों से अभिषिक्त कमलिनी के समान व्यंजित की है। प्राकृतिक उपमानों का उपयोग केशव ने पर्याप्त रूप से किया है। वे संस्कृत के अच्छे अध्येता थे और संस्कृत की अप्रस्तुत योजना उन्हें ग्रहण की थी। संस्कृत साहित्य शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार वे अप्रस्तुत योजना में शब्द को भी रूप गुण क्रिया के समान ही साम्य व्यसम्य का आधार बनाकर चलते हैं। अपनी निजी प्रतिभा से उन्होंने उपमानों को की नवीनता या प्रचलित उपमानों के नवीन प्रयोग दर्शित किए हैं तथा प्रकृति रूपों का सफल प्रयोग किया है, किंतु जहां बिना सुंदर साम्य स्थापना का विवेचन किए भी हुए कवि ने प्राकृतिक उपमानों का प्रयोग किया है, वहां पर यह योजना आज के आलोचक की दृष्टि से उपहासनीय हो गई है। यही कारण है कि केशव पर यह आरोप लगाया जाता है कि प्रकृति निरीक्षण का उन्हें अवकाश न था, परंतु एक तो ऐसे चित्र केशव के काव्याकाश में दो एक टिमटिमाते हुए तारों के समान ही हैं, दूसरे उनके पीछे कृतिकार का व्यक्तित्व एवं एक परंपरा है। केशव ने प्रकृति के मार्मिक स्वाभाविक तथा सजीव चित्रों के लिए सफल अप्रस्तुत योजना का भी पर्याप्त प्रयोग किया है, साथ ही साथ उनके ऐसे स्थलों का भी अभाव नहीं जहां प्रस्तुत योजना का प्रयोग रूप साम्य भाव साम्य तथा वातावरण निर्माण के लिए किया गया है। मानव भावनाओं के रूप में निरंतर प्रकृति के साथ रहते रहते मनुष्य को प्रकृति बिल्कुल निरपेक्ष और जड़ नहीं प्रतीत होती। यह स्वाभाविक है कि वह चराचर प्रकृति को सचेतन और भावशील पाए। यही कारण है कि प्राचीन काल से काव्यकार प्रकृति को मानव का सा रूपाकार देते आए हैं और उनमें मानव क्रिया और मानव व्यापारों को खोजते रहे हैं। प्रकृति के चेतन प्राणियों में तो मनुष्य की सी भावनाएं ममत्व रक्षा विरह व्यथा आदि मिलती ही हैं, किंतु प्रकृति के उपासक कवियों ने जड़ प्रकृति में भी पेड़ पौधे आदि में भी मानव संसार का अनुकरण पाया है और उनमें भी सुख दुख हर्ष विषाद ईर्ष्या संवेदना आदि का अनुभव किया है। प्रकृति के इस प्रकार के मानवीकरण के क्षेत्र में कालिदास सर्वश्रेष्ठ है। केशव को भी इस दृष्टि से पर्याप्त सफलता मिली है। यद्यपि उनके काल में प्रकृति से अधिक महत्व मनुष्य को दिया जाने लगा था, तथापि उन्होंने प्रकृति मानव सुलभ भाव को खोजने का सफल प्रयत्न किया है। अलंकारों से नाक मुंह सिकोड़ने वाले लोगों के पल्ले कुछ न पड़े, यह बात दूसरी है। वर्षा को चंडी के विकास रूप में तथा शरद को कुलीन सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। इतना ही नहीं, यह शरद उन्हें उस वृद्धा दासी की तरह भी दर्शित होती है जो उन्हें प्रातःकाल उठाने आती थी। लक्ष्मण दासी वृद्ध सी आई शरद सुजाती, मनहु जगावन को हम ही बीते बरसा राती। यहाँ पर वृद्धा से शरद का रूप साम्य ना दिखाकर कवि ने कर्म साम्य की उत्प्रेक्षा कर डाली है। इसी प्रकार शरद कहीं उन्हें शारदा जैसी प्रतीत हुई है, सिसिर वर्णा की सी शोभा धारण करती है। वर्षा में बाढ़युक्त नालियां अपने किनारों को डुबा देती है, जैसे अभिसारिकाएं अपने धर्म के मार्ग को मिटा देती है। अभिसारिणी सी समझो पर नारी, सतमार्ग मेटन कौ अधिकारी। जिस प्रकार से सज्जन पुरुष नरपराधी को कष्ट देने वाले आतताई का दंड देने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं, वैसे ही इंद्र भी अपने दल बल सहित सूर्य पर चढ़ाई कर बैठते हैं, क्योंकि उसने निरपराध पृथ्वी के शरीर को ताप पहुंचाया है। प्रायः कविगण ऐसा वर्णन करते रहे हैं कि अवतारी पुरुषों के सम्मान में प्रकृति नम्र और अनुकूल हो जाती है। केशव ने भी राम के सम्मान में प्रकृति की विषम परिस्थितियों का अनुकूल हो जाना दिखाया है, मानो ईश्वर के संपर्क में प्रकृति अपनी मलिनता त्याग कर प्रफुल्लित हो उठी हो। यह राम के संसर्ग का ही प्रभाव है। एक स्थल पर कवि ने प्रकृति का अत्यंत कमनीय और मनोरम वातावरण प्रस्तुत किया है। राम और सीता जब एकत्र बैठते हैं तब सीता के वीणा वादन पर मुग्ध होकर पशु पक्षी घिराते हैं और राम द्वारा प्रेम पूर्वक पहनाए गए आभूषणों को भी निस्संग भाव से ग्रहण करते हैं। जब जब धरी बीना प्रकट प्रबीना, बहुगुण लीना सुख सीता, पिय जियहि रिझावे दुखनी भजावे, विविध बजावे गुणगीता। तजी मति संसारी विपिन बिहारी, सुख दुख कारी घिरि आवे, तब तब जग भूषण रिपुकुल दूषण, सबको भूषण पहिरावे। इस प्रकार हिंस पशुओं में भी संगीत प्रेमी होना कवि ने पाया है। महान विभूतियों के साक्षात्कार से प्रकृति जीवों में वैषम्य भावना ही तिरोहित हो जाती है। तभी तो भारद्वाज आश्रम के पशु सहज विरोध को भुलाकर जीवन यापन करते हैं। केशव दास मृगज बछैरु चोसे बार नीन, चाटत सुरभि बाघ बालक बदन है। प्रकृति उपदेशात्मक रूप में, इतना ही नहीं प्रकृति का उपदेशात्मक रूप भी कवि के सम्मुख आया है। प्रकृति के स्वाभाविक तत्वों को दृष्टि में रखकर कवि उनसे जीवन तत्वों का संग्रह करता है। तरणी किरणी उदित भई, दीप ज्योति मलिन गई, सदय हृदय बोध उदय, ज्यों कुबुद्धि नाशय। इसी प्रकार कहीं उन्होंने मानव जीवन के सत्यों को प्रकृति में चरितार्थ होने दिया है। ब्राह्मण जब सूरापान करने में लीन होता है तो उसकी शोभा और संपत्ति नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार चंद्र भी वारुणी की इच्छा करने मात्र से श्रीहीन हो गया है। जही वारुणी की करी रंचक रुचि द्विजराज, तही कियो भगवंत विन संपत्ति शोभा साज। निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि केशव ने प्रकृति के चित्र खींचे हैं और पर्याप्त मात्रा में। प्रकृति का उन्होंने आलंबन, उद्दीपन, उपमान, पृष्ठभूमि, प्रतीक, अलंकार, उपदेश, दूति, बिंब प्रतिबिंब, मानवीकरण, रहस्य तथा मानव भावनाओं का आरोप आदि सभी शैलियों में वर्णन किया है। प्रकृति का यथा तथ्य और सुंदर चित्रण करने की क्षमता उनमें थी और वे चाहते तो उसको अपना आलंबन बनाकर और प्रकृति का स्वच्छंद और स्वाभाविक चित्रण कर प्रकृति कवि के रूप में प्रसिद्ध हो सकते थे। वैभव और विलास के वातावरण में रहने के कारण उनकी मनोवृत्ति कला पक्ष की ओर विशेष रही। संस्कृत साहित्य के अति संपर्क के कारण उनकी दृष्टि बहुत कुछ बद्ध रही, फलतः प्रकृति चित्रण यत्र तत्र दुरूह प्रतीत होते हैं। उनमें हृदय की अपेक्षा बुद्धि का प्राधान्य हो गया है। यदि उनमें चमत्कार प्रियता न होती तो उनके प्रकृति चित्र भी भवभूति और कालिदास के समकक्ष हो सकते थे, परंतु उन्होंने प्रकृति को कवि की दृष्टि से नहीं अपितु कवि संप्रदाय की दृष्टि से देखा है, अतः वे अपने उद्देश्य में सर्वथा सफल हुए हैं। समाप्त।